From the Conference Center at Temple Square in Salt Lake City, this is the 180th semi-annual general conference of The Church of Jesus Christ of Latter-day Saints, with speakers selected from the general authorities.
Salt Lake City के Temple Square के सम्मेलन केंद्र से यह अंतिम दिनों के संतों के यीशु मसीह के जगह का 180वां अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन है.
This broadcast is furnished as a public service by Bonneville Distribution.
इस सेवा के रूप में इस प्रसारण का आयोजन बॉनिवेल वितरण के केंद्र से किया गया है. किसी भी तरह की तैयारी, रिकॉर्डिंग या इस कार्यक्रम का अन्य प्रयोजन बिना लिखित सम्मति के निषेध है. प्रेसिडेंट ओक्टॉफ इसका सेकंड काउंसलर इस सम्मेलन का उद्घाटन करेंगे.
भाई और बहनों, मैं आपका स्वागत करता हूँ 180वीं अर्धवार्षिक जनरल सम्मेलन के चौथे सत्र में. हम आप सुन सबका अभिवंदन करते हैं जो सम्मेलन में केंद्रीय संसार भर स्टेक केंद्रों में रेडियो, टेलीविजन, इंटरनेट या सैटेलाइट प्रसारण द्वारा से देख के सुन रहे हैं. हम इस सम्मेलन में उपस्थित जनरल अधिकारी और जनरल सहायक अध्यक्षों का आभार प्रकट करते हैं. इस सत्र का संगीत वाग पर क्ले क्रिश्चियनसन और रिचर्ड एलियट के साथ मैकविल उबर के निर्देशन आर टैबरनेकल गायन मंडली द्वारा होगा. गायक मंडली ने ट्रूथ इटर्नल गाकर इस सत्र का आरंभ किया और अब वो जहोवा लॉर्ड हेवन एंड अर्थ गाएगी. इसके बाद सत्र के एल्डर जेराल्ड क्रसे द्वारा आरंभिक प्रार्थना दी जाएगी.
Our dear Father in heaven,
हमें खुशी है इस सुबह इस सम्मेलन में, और खुशी है इस सम्मेलन में संतों के दुनिया भर में. हम आभारी हैं उस ज्ञान के लिए जो हमारे पास है, उस देवी योजना की जो अपने उद्धारकर्ता ने दिया है. हम आभारी हैं उस सच्चाई के लिए जो हमारे लिए आज मौजूद है. हम आभारी हैं जीते पैगंबर के लिए. हम मांगते हैं कि आप आशीर्वाद दें और उन सभी को जो उनके साथ कार्य करते हैं. अब जैसे हम ये सम्मेलन शुरू करते हैं, हम प्रार्थना करते हैं उन सभी के लिए जो यहाँ बात करेंगे, ताकि आपकी आत्मा उनके साथ सदा रहे, हमारे पास कि हम उनके शब्द समझ पाए और सारे दिल से सुनकर उसे करें और उनके सिखाई बातें.
That we may be full of humility, that those who need comfort may be comforted.
आराम दे जिन्हें आराम की जरूरत है.
May find answers to their prayers.
अपने सवालों के जवाब मिल पाए हमें. हम ये आपके बेटे मसीह से इन आशीर्वादों के लिए मांगते हैं.
Of Jesus Christ.
ईसा मसीह के नाम से. Amen.
इस सुबह के पहले प्रवक्ता होंगे हेनरी बियरिंग, प्रथम अध्यक्षता में प्रथम सलाहकार. उनके पश्चात गायन भटली गाएगी, डियर टू द हार्ट ऑफ द शेफर्ड. गाने के पश्चात 12 परितरों के परिषद के अध्यक्ष बोर्ड के पैकर हमसे संबोधित करेंगे, जिसके पश्चात हम 70 की अध्यक्षता के एल्डर जेई जेंसन से सुनेंगे.
My beloved brothers and sisters.
मेरे प्यारे भाइयों और बहनें, आप सभी से बात करने का मुझे आज सम्मान मिला है. दुनिया भर के लाखों अनुवर्ती दोनों के संतों से बोलने के सौंपे कार्य पर मैं विनम्र हूँ. तैयारी में मैंने आपकी व्यक्तिगत जरूरतें जानने के लिए और प्रभु का तुम्हारे लिए संदेश जानने के लिए प्रार्थना और चिंतन किया है. तुम्हारी जरूरतें बड़ी और भिन्न हैं. तुम में से हर एक ईश्वर का बच्चा है जिसे वो जानता है. वो प्रोत्साहन, सुधार और मार्गदर्शन का संदेश तुम्हारी जरूरतों के अनुसार भेजता है. ये जानने के लिए कि ईश्वर मुझसे क्या कहलवाना चाहता है, मैंने पुराने सम्मेलनों और धर्मग्रंथों के संदेश पढ़े. जैसे मैं मोमन की किताब पढ़ रहा था, मुझे जवाब मिला प्रभु के महान सेवक आलमा के इन शब्दों में, काश मैं स्वर्गदूत होता और मुझे दुल की आजू मिल पाती, ताकि मैं ईश्वर की तरह ही से बोल पाता जो आवाज़ पृथ्वी को खिलाती और हर इंसान को प्रोत्साह प्रायश्चित करने बुलाती. हाँ, मैं हर जीव को गवस्ती आवाज में प्रायश्चित और मुक्ति की योजना सिखाता, ताकि वह प्रायश्चित करके ईश्वर के पास आ पाए, जिसकी वजह से दुनिया के सभी गम मिट पाए. पर आखिर मैं आदमी हूँ और मेरी इच्छा में पापी हूँ, क्योंकि मुझे संतुष्ट होना चाहिए उन बातों से जो प्रभु ने मुझे दी हैं. और फिर मैंने आलमा के चिंतन में वो निर्देशन पाया जो मैं खोज रहा था. और देखो, प्रभु उसका संदेश हर राष्ट्र को देता है उनके राष्ट्र और भाषा से. हाँ, विवेक से वो सभी बातें सिखाता है जो उनके लिए जरूरी हैं। इससे हम देखते हैं कि वो विवेक सच्चाई और न्याय से सलाह देता है। ईश्वर के सेवक का इस संदेश से मेरा आज का उद्देश्य स्पष्ट हुआ। ईश्वर उसके अधिकृत दूतों द्वारा उसके बच्चों को संदेश भेजता है। मुझे उनकी सलाह मानने जितना भरोसा निर्माण करना चाहिए। हमारी और प्यार की वजह से वो हमारी खुशी चाहते हैं और वो जानते हैं कि उन पर भरोसा न रखने से दुख आता है। इस भरोसे की कमी की वजह से स्वर्गीय पिता के बच्चों ने पृथ्वी निर्माण होने से पहले भी दुख पाया। पैगंबर जोसेफ स्मिथ द्वारा मिली आकाशवाणी द्वारा हम जानते हैं कि स्वर्ग में हमारे कई भाइयों और बहनों ने उनकी और उनके ज्येष्ठ बेटे यहोवा की हमारे लिए बनाई हुई योजना ठुकराई। हमें शैतान की उस बगावत उकसाने की सफलता की सभी वजह पता नहीं है, पर एक वजह साफ है कि जिन्होंने शरीर पाने का आशीर्वाद खोया उन्हें ईश्वर में अनंत दुख टालने जितना भरोसा नहीं था। ईश्वर में भरोसा न होने की बुरी मिसाल उत्पत्ति से जारी है। मैं सावधानी से ईश्वर के कुछ बच्चों के नमूने पेश करता हूँ, क्योंकि उनके भरोसाहीन होने के सभी वजह मैं नहीं जानता। तुमने शायद उनके जीवनों में के इन संकटों का अध्ययन किया होगा। जैसे योना न सिर्फ प्रभु का संदेश ठुकराया नहीं, पर निनेवे जाने के अलावा वो उल्टी दिशा गया। नामन जो कोढ़ से पीड़ित था ने प्रभु के पैगंबर देवा द्वारा दिए आदेश पर भरोसा नहीं किया। उसने उस नदी में नहाने जैसा आसान काम को उसकी प्रतिष्ठा से नीच माना। प्रभु ने पतरस को नाव छोड़कर उसकी ओर पानी पर चलने कहा। उसकी इस कहानी से हमें सहानुभूति है, क्योंकि हमें भी ईश्वर पर भरोसे की जरूरत है। और रात के चौथे पहर यीशु झील पर चलते हुए उनकी ओर आया। जब चेले ने उसे झील पर चलते देखा वो घबरा गए और उन्होंने कहा भूत है, और डर के मारे वो चिल्ला उठे। यीशु ने तुरंत उनसे बात की और कहा धाड़स बांधो, मैं हूँ, डरो मत। पतरस ने जवाब दिया, हे प्रभु, यदि तू ही है मुझे तेरे पास आने के लिए आज्ञा दे। और उसने कहा आ। तब पतरस नाव पर से उतरकर यीशु की ओर पानी पर चलने लगा, पर तेज हवा को देखकर वो डर गया और जब डूबने लगा तो चिल्लाकर कहा, हे प्रभु मुझे बचा। यीशु ने तुरंत हाथ बढ़ाकर उसे थाम लिया और उससे कहा, हे अविश्वासी, तूने क्यों संदेह किया? हम इस अस्तित्व से हिम्मत ले सकते हैं कि पतरस ने प्रभु के शहीद होने तक विश्वास पूर्वक उनकी सेवा की। मॉर्मन की पुस्तक के जवान नफी हमें प्रभु पर भरोसा रखकर उसका आज्ञा पालन करने प्रेरित करता है, वो आज्ञा हमें कितनी भी कठिन लगे। नफी ने खतरे और मौत का सामना करते हुए भरोसे के ये शब्द कहे जो हमें भी अपने दिलों में महसूस करने चाहिए। मैं जाकर वो बातें करूंगा जिसकी प्रभु ने मुझे आज्ञा दी है, क्योंकि मैं जानता हूं कि प्रभु मनुष्य के बच्चों को ऐसी कोई आज्ञा नहीं देता जिसे पूरा करने के लिए उसने पहले से मार्ग न बनाया हो। वो भरोसा ईश्वर को जानने से आता है। पृथ्वी पर अन्य लोगों से बढ़कर हमने सुसमाचार की बहाली की शानदार घटनाओं द्वारा शांति पाई है। प्रभु के इन शब्दों द्वारा वो महसूस की है, स्थिर रहो और जानो कि मैं ईश्वर हूँ, मैं एहसानमंद हूँ ईश्वर के बारे में प्रकट की बातों के लिए जो हमारा भरोसा बढ़ाती हैं। मेरे लिए वो 1822 में न्यूयॉर्क प्रदेश के एक उपवन में शुरू हुआ, जब एक बालक जोसेफ स्मिथ जूनियर एक एकांत जगह पहुंचा। वो प्रार्थना करने लगा पूरे भरोसे से कि ईश्वर उसके सफारिश का जवाब देगा कि वो क्या करे ताकि वो मसीह की क्षतिपूर्ति द्वारा शुद्ध बनकर बन पाए और बचाया जाए। ये विवरण पढ़ते मेरा ईश्वर और उसके सेवकों पर भरोसा बढ़ता है। मैंने सर के ऊपर प्रकाश का एक स्तंभ देखा जो सूर्य से अधिक रोशन था, जो मुझ पर अहिस्ता उतरने लगा। जैसे ही वो नजर आया, मैं अपने शत्रु से मुक्त हो गया जिसने मुझे बांध रखा था। जब प्रकाश मुझ पर आया, मैंने दो व्यक्तियों को देखा जिनकी महिमा अपरंपार थी। वो मेरे ऊपर हवा में खड़े थे। दूसरे की ओर इशारा करते हुए एक ने कहा, ये मेरा प्यारा पुत्र है, इसे सुनो। पिता ने प्रकट किया कि वो जीवित है, कि यीशु मसीह उनका प्रिय पुत्र है, जिसे उसने हमें यानी उनके बच्चों को बचाने भेजा था। मेरा विश्वास है कि उसने उस अनपढ़ बालक को धर्मदूत और पैगंबर बनाया, इसलिए मैं उसके आज के पैगंबर और धर्मदूतों पर भी विश्वास रखता हूँ। इस भरोसे से मुझे और मेरे परिवार को आशीर्वाद मिले हैं। कई साल पहले मैंने प्रधान बंसन को ऐसे ही सम्मेलन में सुना। उसने सलाह दी कि हमें कर्ज चुका कर उससे मुक्त होना चाहिए। उन्होंने मकान से बंधक से का उल्लेख किया, कहा कि शायद मुमकिन न हो, फिर भी हमें कोशिश करनी चाहिए उससे मुक्त होने के लिए। सभा के बाद मैंने पत्नी से पूछा, क्या कोई तरीका है कि हम ये कर पाएं? पहले हमें कुछ नहीं सूझा, फिर शाम को मैंने एक दूसरे प्रदेश में खरीदी जमीन के बारे में सोचा। कई सालों से हम उसे बेच नहीं पा रहे थे, पर ईश्वर पर भरोसे की वजह से और उनके सेवक का कहा मानने पर हमने सोमवार सुबह सैन फ्रांसिस्को के उस आदमी को फ़ोन लगाया जो ज़मीन बेच रहा था। मैंने उससे कई हफ्ते पहले बात की थी। उसने कहा था कि वो ज़मीन कई सालों से कोई देखने नहीं आ रहा था, पर सोमवार को मैंने वो जवाब सुना जो आज भी मेरा ईश्वर और उसके दूतों पर का भरोसा बढ़ाता है। उसने कहा, मुझे आश्चर्य है तुमने फोन किया, आज ही एक आदमी ने वो खरीदने की रुचि जताई। मैंने पूछा वो कितनी रकम देने तैयार है। वो रकम मकान के बंधक से थोड़ी ज्यादा थी। कोई कह सकता है वो संयोग था, पर हमने बंधक चुकाई थी और आज भी हमारा परिवार पैगंबर के संदेश में वो बातें खोजता है जिससे ईश्वर की इच्छा के अनुसार हमारी खुशी और सुरक्षा बढ़ पाए। ईश्वर पर भरोसे से समाज और परिवार दोनों की भलाई हो सकती है। मैं एक छोटे गांव में बड़ा हुआ। हमारे गिरजे के शेखे में 20 से कम नियमित आने वाले सदस्य थे। उनमें से एक विनम्र बुजुर्ग गिरजे की में परिवर्तित स्त्री थी। वो नॉर्वे से आई थी। वो अंग्रेजी नॉर्वे के भारी लहजे में बोलती थी। उसके परिवार की वो एकलौती सदस्य थी। उसके शहर की भी वो एकलौती सदस्य थी। मेरे पिता जो शाखा अध्यक्ष थे, उनके द्वारा प्रभु ने उसे सहायक संस्था का अध्यक्ष नियुक्त किया था। निर्देशन के लिए पास में कोई किताब नहीं थी, कोई भी सदस्य पास नहीं रहता था। वो सिर्फ सहायक संस्था का उद्देश्य जानती थी, जो है कि करुणा अमर है। वो प्रभु का जरूरतमंद लोगों की ओर प्यार भी जानती थी। उन दिनों में महान मंदी जारी थी, हजारों लोग बेकार और बेघर थे। उसने महसूस किया कि प्रभु ने उसे कार्य सौंपा था। उसने पड़ोसियों से पुराने कपड़े इकट्ठा किया और उस कपड़ों को धोए, इस्त्री की और बक्से में डालकर घर के पीछे रखे। जब किसी गरीब आदमी को कपड़े की जरूरत पड़ती, उसके पड़ोसी उसे कहते, इस रास्ते पर आगे बढ़ो, वहाँ एक मोमन औरत तुम्हारी जरूरत पूरी करेगी। प्रभु ने उस शिविर का एक हिस्सा इच्छाई की ओर बदला। उसने एक छोटी औरत को बुलाया जिसने उस पर भरोसा रखकर उसकी मर्जी खोजी और फिर पूरी की। उसके प्रभु पर के भरोसों की वजह से स्वर्गीय पिता के सैकड़ों बच्चों को सहायता मिली। ईश्वर पर यही भरोसा देशों को भी आशीर्वाद दे सकता है। ईश्वर आत्मा का ये वचन पूरा करेगा, देखो प्रभु उसका संदेश हर राष्ट्र को देता है, उनके राष्ट्र और भाषा में। हाँ, विवेक से वो सभी बातें सिखाता है जो उनके लिए जरूरी समझता है। प्रभु देशों का शासन न करते उनका ख्याल रखता है। प्रभावशाली पदों पर ईश्वर पर भरोसा रखने वाले ऐसों को रखता है जो लोगों का भला चाहते हैं और प्रभु पर भरोसा रखते हैं। मैंने अपनी दुनिया भर की यात्राओं में देखा है 100 लाख से ज़्यादा आबादी के शहर के खेल के एक बड़े मैदान में मैं अनुमोदित दिनों के संतों के सम्मेलन में बात कर रहा था। सभा शुरू होने के पहले अगली पंक्ति में बैठे मैंने एक आकर्षक आदमी को देखा, जो और वो उस जैसे दूसरों से घिरा था जो, और उन्होंने बाकी लोगों से बढ़िया कपड़े पहने थे। मैंने बगल में बैठे गिरजे के सामान्य अधिकारी से पूछा, वो कौन है? वो शहर का महापौर था और बाकी उसके कर्मचारी थे। जैसे मैं अपनी गाड़ी की ओर चल रहा था, महापौर और कर्मचारियों ने साथ हाथ बढ़ाकर मुझे प्रणाम करने रुका था। हमारे शहर और देश में आने के लिए शुक्रिया, आप अपने लोगों को उठाते हैं, हम आभारी हैं। ऐसे लोगों और परिवारों द्वारा हम हमारे लोगों के लिए शांति और समृद्धि निर्माण कर सकते हैं। उस क्षण मैंने पहचाना कि ईश्वर ने उसे उसके बच्चों के बारे के बीच शक्ति का पद दिया था। हम उस बड़े शहर में कम संख्या के लोग थे, माओ पर और को हमारे सिद्धांतों के बारे में ज़्यादा पता नहीं था। फिर भी ईश्वर ने उसे संदेश भेजा था कि अनुमोदित दिनों के संत और अधिकृत सेवक ईश्वर से किए करार और उस पर भरोसे द्वारा शहर के लोगों के लिए रोशनी बनेंगे। मैं ईश्वर के सेवकों को जानता हूँ जो इस सम्मेलन में आपसे उपदेश देने वाले हैं। उन्हें ईश्वर ने बुलाया है उनका संदेश पहुँचाने। जो मैंने प्रभु ने कहा है सो कहा है, मैं उससे नहीं हटता। चाहे स्वर्ग चला जाए या पृथ्वी, फिर भी मेरा शब्द जारी रहेगा और पूरा होकर ही रहेगा, चाहे मेरी आवाज़ से या मेरे सेवकों की आवाज़ से। बात एक ही है, तुम उस पर भरोसा जताते हो तब तुम सीखने के इरादे से सुनते हो, फिर प्रायश्चित करके कार्य करते हो। वो जो भी हो, ईश्वर पर अगर भरोसा हो, हर प्रवचन गाने और प्रार्थना में तुम संदेश पाओगे। फिर अगर तुम जाकर उसकी मौजी करोगे, तुम्हारा भरोसा बढ़ेगा और अंत में तुम अभाव से भर जाओगे। जब तुम जानोगे कि वो भी तुम पर भरोसा करता है। मैं बयान देता हूँ कि ईश्वर आज उसके अनुभवती दिनों के संतों के नियुक्त सेवकों द्वारा बोलता है। प्रधान मॉनसन उनके पैगंबर हैं। स्वर्गीय पिता यीशु मसीह जीवित है और हमसे प्यार करते हैं। यीशु मसीह के नाम से तथास्तु।
Thank you. this general conference.
ये general conference आज के अनिश्चित और संकट के समय में हो रहा है, जिसमें हमारे युवा लोग सोच रहे हैं जीवन कैसे जिएं। भगवान ने हमें ऐसे समय के बारे में आगाह किया हुआ है, इसलिए प्रॉफिट्स और अपोसल्स को हमेशा दिखाया गया है कि क्या करना चाहिए। प्रभु ने प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ को बताया कि हर व्यक्ति प्रभु जो भगवान हैं, दुनिया को बचाने वाले हैं, उनके नाम में बोल सकते हैं। जब प्रीस्टहुड की चाबियां लौटाई गईं, तो प्रीस्टहुड अधिकार दादा नाना पिता और लड़कों द्वारा हर घर में आया। 15 साल पहले जब विश्व में हलचल मची हुई थी, फर्स्ट प्रेसिडेंसी और कोरम ऑफ द 12 अपोसल्स ने फैमिली अ प्रोक्लेमेशन टू द वर्ल्ड जारी किया, जो चर्च के इतिहास में 5वीं घोषणा थी। स्क्रिप्चर्स में मिली परिभाषा के अनुसार ये एक रेवलेशन है, एक मार्गदर्शन है, जिसे पढ़ने और पालन करने से ही चर्च के मेंबर्स अच्छे से रहेंगे। इसका एक हिस्सा कहता है, हम द फर्स्ट प्रेसिडेंसी और द काउंसिल ऑफ द 12 अपोसल्स ऑफ द चर्च ऑफ जीसस क्राइस्ट ऑफ लैटर-डे सेंट्स गंभीरता से घोषणा करते हैं कि एक नर और एक नारी के बीच शादी भगवान द्वारा नियुक्त की गई है, और परिवार विधाता की योजना, जो उनके बच्चों के अनंत भाग्य के लिए का मुख्य हिस्सा है। भगवान मनुष्य को अपनी समानता में बनाने के लिए नीचे आए, उन्हें भगवानों की समानता के रूप में बनाने के लिए पुरुष और स्त्री, और भगवानों ने कहा हम उन्हें आशीर्वाद देंगे और ऐसा करेंगे कि वे फलें फूलें और उत्पन्न करें और पृथ्वी को भरें। इस आज्ञा को कभी भी रद्द नहीं किया गया है, और यहाँ उनके अपने को साबित करना होगा कि क्या वे प्रभु द्वारा दी गई हर आज्ञा का पालन करते हैं। भगवान चाहते हैं कि हम खुश रहें, क्योंकि मनुष्य बनाया गया है ताकि वह खुश रहे। लिहाय ने सिखाया कि मनुष्य आज़ाद है, और आज़ाद है ताकि वह अपनी इच्छा अनुसार निर्णय ले, ना कि दूसरों के प्रभाव के अनुसार। केवल महान और अंतिम दिन में कानून की सजा के अनुसार। ये पुरानी कहावत, प्रभु मेरे पक्ष में वोट कर रहे हैं और लूसिफर मेरे खिलाफ वोट कर रहा है, लेकिन मेरा वोट गिना जाएगा, इस सिद्धांत का वर्णन करता है कि हमारी इच्छा शैतान की इच्छा से अधिक शक्तिशाली है। इच्छा कीमती है, हम मूर्खता से अंधे होकर उसे दे सकते हैं, लेकिन वो हमसे छीनी नहीं जा सकती। साथ ही में एक पुराना बहाना है, शैतान ने मुझसे ये कराया, ये गलत है। वो तुम्हें धोखा दे सकता है और गुमराह कर सकता है, लेकिन उसके पास शक्ति नहीं है कि वो तुम्हें या किसी और को गलत काम कराने या करते रहने पर मजबूर कर सके। जीवन उत्पन्न करने की शक्ति जो हमें सौंपी गई है, अपने साथ सबसे अधिक खुशी और सबसे खतरनाक प्रलोभन लाती है। इस नश्वर जीवन का तोहफा और जीवन उत्पन्न करने की शक्ति परम आशीर्वाद है। इस शक्ति के सही इस्तेमाल से जैसे और कहीं नहीं हम भगवान के करीब आ सकते हैं और पूर्ण खुशी का अनुभव कर सकते हैं। ये शक्ति खुशी की योजना का कोई छोटा हिस्सा नहीं है, ये उसका मुख्य हिस्सा है, मुख्य हिस्सा। हम इस शक्ति का प्रयोग अनंत कानून अनुसार करें या फिर इसके दिव्य उद्देश्य को ठुकरा दें, इसका प्रभाव हम क्या बनते हैं उस पर हमेशा के लिए पड़ेगा। क्या तुम ये नहीं जानते कि तुम भगवान का मंदिर हो और कि भगवान की आत्मा तुम्हारे अंदर है? मुक्ति का अनुभव होता है जब कोई व्यक्ति अपनी इच्छा से भगवान की आज्ञा का पालन करने की चाह उन्हें प्रार्थना द्वारा व्यक्त करता है। आज्ञा का पालन करने से हम इन शक्तियों का सुख शादी के वचन द्वारा पा सकते हैं। हमारे जीवन से उत्पन्न होंगे हमारे बच्चे, हमारा परिवार। पति और पत्नी के बीच का प्यार सदा बना रह सकता है और हमारे जीवन में पूर्ति और संतोष ला सकता है। यदि किसी को ये आशीर्वाद इस जीवन में ना मिले तो वादा है कि वो आने वाले दुनिया में मिलेगा। सच प्यार के अनुसार केवल अनंत वचन कानून अनुसार शादी, जो कि आदर्श रूप से मंदिर में हुई हो, के बाद ही जीवन उत्पन्न करने वाली शक्तियों का प्रयोग पूर्णतः प्रेम व्यक्त करने के लिए किया जाना चाहिए। उसका प्रयोग केवल पति और पत्नी के बीच उस एक साथ के साथ जो हमारा अनंत साथी है के साथ ही होना चाहिए। इसका सिद्धांत बिल्कुल स्पष्ट है। हम सिद्धांतों को नज़रअंदाज कर सकते हैं, लेकिन जब वे बिल्कुल स्पष्ट हैं, जैसे मत करना, अच्छा होगा कि हम पूरा ध्यान दें। शैतान उन सभी से ईर्ष्या करता है जो जीवन उत्पन्न करने की शक्ति रखते हैं। शैतान जीवन उत्पन्न करने की शक्ति नहीं रखता। वो चाहता है कि सभी लोग उसी की तरह दुखी रहें। वो तुम्हें अनैतिक संबंधों की ओर लुभाता है ताकि इस जीवन देने वाली शक्ति का दुरुपयोग किया जाए। प्रभु ने के समान का प्रयोग किया ताकि उनके अनुयायी समझ सकें। जैसे स्वर्ग का राज्य एक व्यापारी के समान है, स्वर्ग का राज्य एक जाल के समान है, स्वर्ग का राज्य एक खेत में छुपे खजाने के समान है। आज के समय में पोर्नोग्राफी का भयानक प्रभाव एक बीमारी के समान है जो दुनिया में भर में फैल रहा है, एक यहाँ और एक वहाँ को रोगी बना रहा है, हर परिवार पर आक्रमण कर रहा है, अक्सर पति और पिता द्वारा। इस बीमारी का प्रभाव दुर्भाग्य से अक्सर आत्मिक तौर पर घातक होता है। लूसिफर पाप मुक्ति की योजना, सुख की महान योजना को भंग करना चाहता है। पोर्नोग्राफी हमेशा, हरदम हमेशा प्रभु की आत्मा को हटा देगी और भगवान और उनके बच्चों के बीच में संपर्क में और पति पत्नी के कोमल संबंध में बाधा लाएगी। प्रीस्टहुड में खत्म करने की शक्ति है। वो पोर्नोग्राफी की बीमारी से तुम्हारी रक्षा कर सकता है, और ये एक बीमारी है अगर तुम इससे प्रभावित हो। यदि तुम आज्ञाकारी हो तो प्रीस्टहुड तुम्हें कैसे आदत तोड़ते और व्यसन मिटाते हैं दिखला सकता है। हम चर्च के मेंबर्स को चेतावनी देते हैं और माता पिता को चेतावनी देते हैं कि ये बीमारी आपके परिवारों में ना आए। हम नैतिकता का ऐसा स्तर सिखाते हैं जिससे कि लूसिफर के शादी की तरह दिखने वाले संबंधों से बचे रहें। और जिन संबंधों का गॉस्पल के सिद्धांत से अलग हैं, उनसे दूर रहिए। हम जानते हैं कि गलत करना कभी भी सुख नहीं दे सकता। कई लोग कहते हैं कि हम गलत काम करने की भावना के साथ पैदा हुए हैं और उससे नहीं कर सकते हैं। ऐसा नहीं है। हमारे परम पिता किसी के साथ ऐसा ही क्यों करेंगे? जानो कि वो हमारे पिता हैं। भगवान नहीं चाहेंगे कि तुम अपनी शक्ति से ज्यादा सहो और लालच के साथ उससे निकलने का भी एक रास्ता बनाएंगे। तुम कर सकते हो यदि तुम चाहो आदत को तोड़ना और व्यसन से निकलना। अल्मा ने कहा कि अपने को देखो हमेशा, और सावधान रहो उन लोगों से जो सही को गलत और गलत को सही कहते हैं। कई सालों पहले मैंने एक स्कूल में गया जो एक टीचर ने मुझसे कहा, जो एक कक्षा में एक बच्चे एक बिल्ली लाया, तुम सोच सकते हो कि उसमें सब रुक गया। बच्चों ने पूछा कि ये बिल्ली लड़का है या लड़की। उस पाठ में ना पढ़ने से शिक्षिका ने कहा, कोई फर्क नहीं पड़ता, ये केवल एक बिल्ली है। लेकिन बच्चों ने जाने की जिद की। अंत में एक बच्चा बोला, मैं जानता हूँ कि कैसे बता सकते हैं। मामले से ना बचने पाने पर शिक्षिका ने कहा, कैसे बता सकते हो। और छात्र ने उत्तर दिया, हम इस पर वोट कर सकते हैं। तुम कहानी पर शायद हंसो, लेकिन अगर हम सावधान ना हो तो आजकल ऐसे लोग हैं जो केवल बर्दाश्त ही नहीं बल्कि कानून को बदलने के लिए वोटिंग का बाद देते हैं, जिससे अनैतिकता कानूनी बन जाए। लेकिन लॉ ऑफ ग्रेविटी के खिलाफ वोट करने से कोई फायदा नहीं होगा। कानून नैतिक और प्राकृतिक होते हैं, जिन्हें इस दुनिया के बनने से पहले पूरी तरह स्वर्ग में लागू किया गया था, जो कि बदले नहीं जा सकते। जो गलत है उसी कानूनी बनाने से उसके दर्द भरे परिणामों को नहीं रोका जा सकता, जिस तरह दिन के बाद रात को नहीं रोका जा सकता। विरोध के बावजूद हम सही राह पर रहने के लिए दृढ़ हैं। हम गॉस्पल के सिद्धांतों, कानून और नियमों को पकड़े रहेंगे। यदि उन्हें गलत तरह से समझा जाए, बेकसूरी से या जानबूझकर, हम बदल नहीं सकते। हम बदलेंगे नहीं। भगवान के कानून को ना मानने से हम जल्दी ही अपना रास्ता खो देते हैं। यदि हम अपने परिवार की सुरक्षा ना करें तो हमारा समाज और आज़ादी ख़त्म हो जाएगी। मैं प्रभु बाध्य हूँ जब तुम मेरे अनुसार काम करते हो, लेकिन जब तुम मेरे अनुसार काम नहीं करते हो, तुम्हारे पास कोई वचन नहीं है। हर जीव जो पाप, अपराध या दोष के जेल में है, उसके पास उसकी चाबी है। उस चाबी पर लिखा है पश्चाताप। पश्चाताप और माफ़ी के दो सिद्धांतों की ताकत शैतान की शक्ति से बढ़कर है। यदि तुम किसी अयोग्य आदत या व्यसन से बाध्य हो तो तुम्हें उसे रोकना होगा। भगवान के दूत और प्रीस्टहुड के नेता तुम्हें उस कठिन समय में सहारा और सीख देंगे। भगवान की उदारता और विनम्रता, दयालुता पश्चाताप से ज्यादा बढ़कर और कहीं नहीं दिखती। क्या तुम अटोनमेंट जो भगवान के बेटे हमें बचाने वाले द्वारा किया गया था, के साफ करने की महान शक्ति को समझते हो? उन्होंने कहा, मैं भगवान ने चीज़ें सभी के लिए सही हैं ताकि उन्हें सहना ना पड़े यदि वे पश्चाताप करें। प्यार के उस दिव्य कार्य में प्रभु हमारे पापों के लिए सहे ताकि हम सहना ना पड़े। जो सच्चे दिल से चाहता है उनके लौटने के लिए रास्ता है। पश्चाताप एक साबुन के समान है, पाप के गहरे दाग भी निकल आएंगे। प्रीस्टहुड रखने वाले पोर्नोग्राफी के अश्लील दृश्यों को हटाने और मलाल को धो डालने की शक्ति रखता है। प्रीस्टहुड में आदत और व्यसन के प्रभाव को तोड़ने की शक्ति है, भले ही उनकी पकड़ कितनी कड़ी हो। वो पहले के पापों का घाव को मिटा सकता है। मैं कहता हूँ कि जिसने पश्चाताप किया है वो माफ कर चुका है, और मैं उनके पापों को याद नहीं रखता। कई बार पाप का पश्चाताप के बाद भी अपने को माफ करना सबसे मुश्किल होता है। हमें समझना चाहिए कि माफ करने का अर्थ माफ करना होता है। जब भी मेरे लोग पश्चाताप करेंगे मैं उन्हें माफ करूंगा। प्रेसिडेंट जोसेफ फील्डिंग स्मिथ ने पश्चाताप करने वाली एक महिला के बारे में बताया जो एक बहुत अनैतिक जीवन से उभर रही थी। उस महिला ने उनसे पूछा कि उसे क्या करना चाहिए। उन्होंने उसे ओल्ड टेस्टामेंट में लॉट और लॉट की पत्नी जो नमक का खंभा बन गई थी के बारे में पढ़ने को कहा। फिर उन्होंने उससे पूछा, इनसे तुम्हें क्या सीख मिलती है? महिला ने उत्तर दिया, प्रभु पाप करने वालों को नष्ट कर देंगे। ऐसा नहीं है, प्रेसिडेंट ने उस पश्चाताप करने वाली महिला से कहा, तुम्हारे लिए पाठ यह है कि पीछे मत देखो। भले ही अजीब लगे लेकिन पोर्नोग्राफी के लिए सबसे साधारण और शक्तिशाली निवारण और इलाज या किसी भी अशुद्ध काम के लिए उस पर ध्यान देना ना देना और उससे बचना है। अपने दिमाग से हर कोई अश्लील ख्याल हटा दो। एक बार जब तुम शुद्ध रहने का फैसला कर लेते हो तब अपने भगवान द्वारा दी गई इच्छा का प्रयोग कर रहे हो। पीछे मत देखो। चर्च में सब कार्यों का परम लक्ष्य है कि एक पति और पत्नी अपने बच्चों के साथ घर में खुश रहें। मैं गवाही देता हूं उस शक्ति की, ईसा मसीह के नाम में, आमेन।
एक युवा एल्डर के रूप में मेरे प्रचार कार्य में लगभग एक वर्ष बीत चुका था और प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा के विषय में धर्मशास्त्रों और अंतिम दिनों के प्रेरितों के शब्द को पढ़ने से मुझे प्रभावशाली जागृति मिली थी। मेरे पास स्वयं की गवाही नहीं थी, विशेषकर पिता और पुत्र की। मेरे अपने मिशन पर अपने महान पांता पिता की गवाही के आधार पर गया था। कभी भी उनके शब्द पर संदेह न करते हुए मैंने अपने स्वयं की आत्मिक साक्षी को प्राप्त करने के बारे में नहीं सोचा था। मैंने सैन एंटोनियो टेक्सास में फरवरी के एक रात को मैंने निश्चय किया कि इसे मुझे स्वयं अनुभव करना है। अपने छोटे से फ्लैट में मैंने एक स्थान खोज लिया जहां मैं एकांत में बोलकर याचना करते हुए प्रार्थना कर सकता था। स्वर्गीय पिता, क्या आप हैं? मुझे मेरे लिए जानना होगा। उस रात कुछ समय के पश्चात अपने जीवन में पहली बार मैंने स्वयं के लिए जाना कि परमेश्वर और यीशु वास्तव में हैं। मैं जानता कि इसी तरह से आपने भी जान होगा, जो कि पवित्र आत्मा के अद्वितीय उपहार और प्रकटीकरण की आत्मा द्वारा आई मेरे मन को शांति प्रदान करते हुए और मेरे हृदय को सुनिश्चित करते हुए। ये शब्द या बीज पेड़ बन गए, वास्तव में गवाही के विशाल वृक्ष। गवाही और वृक्षों को देते हुए यह प्रक्रिया शब्द पर आधारित अनुसंधानों का साथ जारी रहती है, जो कि पवित्र आत्मा से और उसके द्वारा प्रकटीकरण पर आधारित अब वास्तविक में एक जंगल हो गया है। शिष्यों ने लोगों को 12 के ढलों में वह सीखने के लिए एकत्रित किया था जिसे उद्धारकर्ता ने उन्हें सिखाया था। उनकी शिक्षाओं में मुख्य शिक्षा पवित्र आत्मा के महत्व पर थी। तब लोगों ने घुटने तक और प्रार्थना की। उनकी हार्दिक इच्छा पवित्र आत्मा को प्राप्त करना था। हे पिता, मैं तुझे धन्यवाद देता हूँ क्योंकि तुमने इन लोगों को जिनमें मैंने चुना है पवित्र आत्मा दिया है। हे पिता, मैं तुमसे प्रार्थना करता हूँ कि जितने भी लोग इनके बातों पर विश्वास करें उन्हें सभी को पवित्र आत्मा देना। मॉर्मन की पुस्तक की इस घटना पर आधारित मैं अच्छी तरह से समझ कर सकता हूँ कि क्यों अध्यक्ष विल्फोर्ड वुड्रफ ने कहा था कि वह पवित्र आत्मा का उपहार महात्म उपहार के जिस मनुष्य को दिया जा सकता है। जरूरत के समय में प्रकटीकरण से उत्तर मिलता है। पिता और पुत्र के साथ पवित्र आत्मा ईश्वरत का तीसरा सदस्य है। उसकी कई महत्वपूर्ण भूमिकाएं हैं, उनमें सबसे अधिक महत्वपूर्ण शिक्षा देना और पिता और पुत्र की गवाही देना है। अन्य भूमिकाएं हैं सारी बातें की सच्चाई प्रकट करना और अच्छाई करने के लिए मार्गदर्शन करना। अध्यक्ष मॉन्सन अच्छाई के प्रति मार्गदर्शन की इस महत्वपूर्ण भूमिका का उदाहरण देते हैं। उन्होंने पवित्र आत्मा की आत्मिक फुसफुसाहटों की उपेक्षा ने करने के महत्व की सिखाया है। किसी का दौरा करने और उनकी सेवा करने और किसी को बचाने के महत्व को सिखाया है। परंतु कभी कभी जरूरत के समय में अध्यक्ष मॉन्सन के समान कोई नहीं होते हैं। कोई घर शिक्षक नहीं होता है, देखभाल करने वाली कोई ही बहन उपलब्ध नहीं होती है। उन परिस्थितियों में मैंने पवित्र आत्मा की अन्य भूमिका सहायक से दिलासा और निर्देश प्राप्त किया है। हमारा पोता क्विंटन जन्म के कई विकारों के साथ पैदा हुआ था। उस समय मैं और बहन जेनसन अर्जेंटीना में रह रहे थे। हम सच में अपने बच्चों के पास रहना चाहते थे ताकि उन्हें सांत्वना दे सके और उनसे सांत्वना पा सके। यह हमारे पोता था जिसे हमें प्रेम किया था और उसके पास रहना चाहते थे। हम केवल प्रार्थना कर सकते थे और हमने ऐसा बहुत उत्साह से किया था। मेरी पत्नी और मैं मिशन पर थे जब हमने सुना कि क्विंटन का निधन हो गया। हम सभागार के रास्ते में खड़े हो गए और एक दूसरे को गले लगाए और दिलासा दी। मैं आपकी साक्षी देता हूँ कि वह आश्वासन हमारे पास पवित्र आत्मा से आया था।
And their children, who to this day speak of that time with such faith, peace, and comfort.
प्रकटीकरण के उसी उपहार ने मॉर्मन की पुस्तक की मेरी गवाही को प्रभावित किया है। मैंने पढ़ा है, अध्ययन किया है, खोजा है और उसे बार बार ग्रहण किया है। पवित्र आत्मा ने उसकी सच्चाई और ईश्वरत्व को मुझे पर प्रकट किया है। अध्यक्ष गॉर्डन बी हिंकली ने मॉर्मन की पुस्तक को गिरजाघर के चार आवश्यक कोने के पत्थरों में से एक बताते हैं। अन्य है जोसेफ स्मिथ का पहला दिव्य दर्शन, पौरोहित्य की पुनर्स्थापना और निस्संदेह मुख्य कोने के पत्थर, यीशु मसीह की हमारे गवाही। उन्होंने समझा था परमेश्वर द्वारा दिए गए चार महान उपहार अटल कोने के पत्थर हैं जो कि अंतिम दिनों की संत का यीशु मसीह का गिरजाघर और व्यक्तिगत गवाहियों और उसके सदस्यों की धारणाओं को मजबूती देती है। फिर भी कुछ समय के लिए मैं इन कोने के पत्थरों के उपहार में से दो पर प्रकाश डालना चाहता हूँ, पहला दिव्य दर्शन और मॉर्मन की पुस्तक पर। यह महत्वपूर्ण है कि दोनों की शुरुआत ऐसे पारिवारिक परिवेश में होती है जहां बच्चों का जन्म अच्छे माता पिता से हुआ और जिनके द्वारा उन्हें अच्छी शिक्षा मिली। हर एक की विशिष्ट आवश्यकता था। प्रत्येक ने प्रार्थना की, प्रत्येक को पिता और पुत्र की दिव्य दर्शन प्राप्त हुआ, प्रत्येक को एक किताब दी गई, दोनों ने प्रचार किया, प्रत्येक ने पवित्र आत्मा से और दिव्य दर्शन और स्वप्नों द्वारा प्रकटीकरण प्राप्त किया। अंत में दुष्ट लोग ने उन्हें धमकी दी, लेही ने लेही और उसका परिवार पलायन कर गए और बच गए, जो शहीद हो गए। ये पुस्तक प्रभु की आत्मा से सरोबर है। प्रारंभ के इन अध्यायों में एक स्पष्ट संदेश है कि प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा केवल भविष्यवक्ताओं को ही नहीं दिया जाता है, पिता और माता और बच्चों को भी दिया जाता है। पूरे मॉर्मन की पुस्तक में प्रकटीकरण और पवित्र आत्मा के विषय में संदेश जारी है। अंतिम दिनों के संतों के रूप में मॉर्मन की पुस्तक की हमारी गवाहियों हमें प्रकटीकरण द्वारा प्रदान की गई है। आत्मा की बातें पवित्र और व्यक्त करने में कठिन हैं। हम अमोन के सामने घोषित करते हैं, सुनो मैं तुम से कहता हूँ कि मैं जो कुछ अनुभव करता हूँ उसके विषय में न्यून से न्यून अंश भी नहीं कह सकता हूँ। विनम्रता से मैं साक्षी देता हूँ कि यह सच्चा और जीवित गिरजाघर, यह धर्म इन चार कोने के पत्थरों पर आधारित है। मैं गवाही देता हूँ कि यीशु मसीह वास्तव में मुख्य कोने का पत्थर है। अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन प्रभु के भविष्यवक्ता है और मेरे पीछे बैठे ये 15 लोग भविष्यवक्ता, दूरदर्शी, प्रेरित और प्रकटकर्ता है। ये पवित्र पौरोहित्य और राज्य को कुंजियों के धारक हैं। मैं इनसे प्रेम करता हूँ, इनका सम्मान और समर्थन करता हूँ। यीशु मसीह के नाम में आमीन।
The choir and congregation will now join.
Choir and congregation, आपके रिडीम और रिजल्ट गाएगा। गाने के बाद में सिस्टर मैरियन को सुनेंगे, जो जनरल यंग वेन प्रेसिडेंसी में फर्स्ट काउंसलर हैं। उसके बाद में जनरल डेलन जो बोलेंगे कोरम द 12 अपोस्टल्स से। क्वायर फिर गाएगा, लव वन अदर गाएगा।
This is the 180th semi-annual general conference of the Church of Jesus Christ of Latter-day Saints.
कुछ समय पहले छोटी सी रूबी ने हमारे परिवार में जन्म लिया था। जब मैंने उसके सुंदर हाथों से देखा, मैं उस जानकारी पर आश्चर्यचकित हुई कि पृथ्वी पर जन्म लेने से पहले वह अपने स्वर्गीय पिता के उपस्थित में रहती थी। उसने उनकी प्रसन्नता की महान योग्यता की स्वीकार किया था और उन्हें इस हमारे उसके निर्णय के कारण अनंत जीवन की तरफ उन्नति के लिए पृथ्वी पर आने के लिए अनुमति दी गई थी। अपनी आत्मा और शरीर के साथ रूबी ने सीखने के समय में प्रवेश किया था, जहां अपने आप जब रूबी इस पृथ्वी पर आई, वह पवित्र थी। पूर्ति योजना की तरह वह कठिनाई के सामना करेगी और वह गलतियां भी करेगी। उसके जन्म के कुछ घंटे के बाद मैंने उसकी माँ से बात की और मैंने बोला कि ओ, हमें रूबी को सिखाना होगा कि इस सद्गुणी कि कैसे वह सद्गुणी स्त्री बने, शुद्ध और अनमोल। उसकी माँ ने कहा, मैं आज ही आरंभ करूँगी। आज आरंभ करने के लिए रूबी की माँ क्या करेगी? किस प्रकार से हम माता पिता दादा दादी के रूप में आरंभ कर सकते हैं और अपने बच्चों को अपने युवा को अनंत जीवन के मार्ग पर रख सकते हैं? हमें विश्वासियों का उदाहरण बनना होगा। प्रॉफिट ब्रिगम यंग ने कहा, हमें कभी भी वह काम नहीं करना चाहिए जो हम अपने बच्चों को करना नहीं देखना चाहते। आज मैं आपको उधार के लिए जरूरी मैं आपको एक उदाहरण दूंगी विश्वास के विश्वासियों का उदाहरण बनने के लिए। मुझे एक महान माँ के बारे में बताने दो जिसका जीवन विश्वास का एक उदाहरण था। जब प्रॉफिट जोसेफ स्मिथ एक छोटा सा लड़का था, उन्होंने अपनी माँ से सीखा कि कैसे बाइबल को पढ़ना और बाइबल से प्रेयर की आंसर ढूंढना। एक दिन लूसी को सहायता प्राप्त करनी थी और उन्होंने एक पास में झाड़ियों के वन में गई और प्रार्थना की। लूसी ने बहुत प्रार्थना की। जब जोसेफ को स्वास्थ्य की सामना किया था और जब उनकी बेटी सोफ्रोनिया टाइफाइड फीवर से और से लगभग मर चुकी थी, सोफ्रोनिया की बीमारी के विषय में लूसी ने लिखा था, मैंने अपने बच्ची को देखा, मैंने और मेरे पति ने उस दिन प्रार्थना की, सोफ्रोनिया ठीक हो गई। मुझे पूरे विश्वास है कि लूसी के बच्चों ने अक्सर विश्वास के साथ उन्हें प्रार्थना करते हुए देखा। लूसी ने विश्वास के से प्रार्थना की थी और जोसेफ ने भी ऐसा किया जब वो पेड़ों के वन में गए और जहां उन्होंने विश्वास से प्रार्थना की प्रभु से उत्तर जानने के लिए। लूसी के समान अपने स्वयं की गवाही को मजबूत करने के लिए हमें अपने बच्चों को दिखाना चाहिए। लूसी के विपरीत अब हमारे पास बाइबल के सिवाय और स्क्रिप्चर भी है। बुक ऑफ मॉर्मन से हम मार्ग के उन लोगों के विषय में जानते हैं जिन्होंने आयरन रॉड को पकड़ रखा था। अगर हमारा एक हाथ रॉड पर हो और दूसरा हाथ संसार में, हम अपने बच्चों और युवा को रास्ते में ढूंढने में नहीं मदद कर सकते। यदि हम उदाहरण बने, हम जेकब के शब्दों में अपने गलत उदाहरण से कारण हम अपने बच्चों को आत्मविश्वास खो देते हैं। माता पिता दादा दादी नाना नानियों को अपने संदेश स्पष्ट होना चाहिए। स्पष्टता केवल दोनों हाथों की आयरन रॉड पर रखने से और स्क्रिप्चर में पाए हुए सच्चाइयों से और प्रॉफिट के शब्दों से पालन करने से आती है। आप एक प्रॉफिट का लालन पालन नहीं करते, पर फिर भी हम कल के लीडरों का लालन पालन करना होता है। अगले शब्दों में विश्वासियों का उदाहरण बने। हमें हमारे लिए शब्द रहने का शुद्ध रहने का एक मात्र तरीका है अपने यीशु मसीह का प्रायश्चित। अपने बच्चों को सिखाना चाहिए बैप्टिज्म की तैयारी करने के लिए। एल्डर रॉबर्ट टी हेल्स ने सलाह दी, हम सिखाते हैं कि जैसे ही वे बैप्टिज्म के पानी से बाहर निकलते हैं, वे संसार में और परमेश्वर के राज्य के कदम में संसार में और परमेश्वर के राज्य में कदम रखते हैं। अनुबंध के द्वारा वे उसी की आज्ञाओं को मानने की सहमति देते हैं। अनुबंध बनाने के लिए पवित्र दाखिल और आज हमारे प्रॉफिट्स ने फॉर द स्ट्रेंथ ऑफ द यूथ बहुत ही अच्छी किताब है हमें दिया है। माता पिता इस पुस्तिका की एक कॉपी प्राप्त करें जो और उसके प्राय उसे बहुत पढ़ें। स्वयं आदर्श बने, युवाओं के साथ गॉस्पल की बातचीत करें। इस पुस्तक के मनोरंजन और माध्यम और पहनावा और दिखावत के सेक्शन पाए बहुत ही मुश्किल हो सकते हैं, क्योंकि हमें ध्यान रखना चाहिए कि जो मीडिया हम अपने घरों में लाते हैं वह स्पिरिट को दूर नहीं कर सकते वो करे। उदाहरण के द्वारा हम अपने बच्चों को समझा सकते हैं कि इंटरनेट, सेलफोन, वीडियो गेम खेलना या टीवी देखना हमें उद्यातक चीज़ों और दूसरों के साथ मूल्यवान क्रियाओं से दूर रख सकती है। हमें पहनावा और दिखावे के द्वारा हमें उदाहरण होना चाहिए जो चीज़ें सद्गुण और स्नेह हैं। हमें बच्चों को समझना चाहिए कि हमारी बॉडी टेंपल के समान है। अनुचित कपड़े जैसे तंग जो कपड़े तंग हो या जैसे जिनमें शरीर को दिखाने वाले कपड़ों पहने से मना करने के द्वारा हम उदाहरण रखते हैं। एक शाम अपने पति के साथ चलते हुए हम एक विवाह से गुजरे। हम इन लोगों को नहीं जानते थे। संगीत और पहनावा का उनका चुनाव बहुत अच्छा था। दुल्हन की सुंदर सा गाउन निश्चित रूप से शालीन था और वैसे ही शालीन कपड़े थे परिवार के। इस परिवार ने दिन की पवित्रता से संसार के तरीकों को दूर रख के मैंने चुनाव किया था। अब मैं अपने चर्च के बहुत अच्छे युवा से कहना चाहती हूँ, अपने मित्रों परिवारों के प्रति आपके नेक उदाहरण के लिए धन्यवाद। मैं जानती हूँ कि कई आप में से परिवार में इकलौते सदस्य हो, आप चर्च अकेले जाते हो। मैं आपके नेक उदाहरण के लिए आपकी प्रशंसा करती हूँ। धैर्यता रखें और धार्मिकता से जीवन जीते रहें। अपने वार्ड और स्टेक में उन लीडर्स और मित्रों को खोजो जो विश्वासियों के उदाहरण हों और उनसे सीखो। जब मैं एक युवा स्त्री थी, मैंने विश्वासियों का उदाहरण पहचाना था। मेरे माता पिता के अतिरिक्त एक मेरी आंटी कर्मा थी। मुझे अच्छी तरह से याद है जब मैं 16 साल की थी, उन्होंने मुझे टेंपल विवाह और का महत्व सिखाया था। मैं उनके उदाहरण का अनुसरण करना चाहती थी। युवा और युविता, विश्वास और श्रद्धा में विश्वासियों का उदाहरण होने के द्वारा आप आज शुरू कर सकते हो। स्क्रिप्चर स्टडी और प्रेयर के द्वारा आप अपनी टेस्टिमोनी को मजबूत कर सकते हो। आप आज शुरू कर सकते हो। आपको पता नहीं है, आप एक उदाहरण हो सकते हो जिसकी आवश्यकता किसी दिन मेरी छोटी सी रूबी को होगी। आज अब के लिए उनके उसके माता पिता घर में उदाहरण रख रहे हैं, विश्वासियों के उदाहरण बन के। मैं प्लान ऑफ हैप्पीनेस के लिए आभारी हूँ और मैं गवाही देती हूँ कि यह एकमात्र तरीका है जिससे रूबी और हम सब अपने हेवनली फादर के पास वापस जा सकते हैं। हेवनली फादर, जीसस क्राइस्ट के नाम में आमेन।
प्रभु ने अपने बच्चों के उसके साथ वार्तालाप करने के दो तरीके दिए हैं, जिसे हम व्यक्तिगत तरीका और प्रभुत्वगत तरीका कह सकते हैं। सभी को वार्तालाप के इन दोनों आवश्यक तरीका को समझना और उससे मार्गदर्शन प्राप्त करना चाहिए। व्यक्तिगत तरीके में हम अपने स्वर्गीय पिता से सीधा प्रार्थना करते हैं और बिना किसी नश्वर मनुष्य के हस्तक्षेप के वह उन माध्यमों के द्वारा हमें उत्तर देता है जिसे उसने स्थापित किया है। हम अपने स्वर्गीय पिता से यीशु मसीह के नाम में प्रार्थना करते हैं और हमें पवित्र आत्मा के द्वारा और अन्य तरीके से उत्तर देता है। पवित्र आत्मा का उद्देश्य पिता और पुत्र की गवाही देना है, हमें सच्चाई मार्ग को दिखाना है और हम पर उन बातों के प्रकट करना है जिससे हम गाना चाहिए। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता बातचीत का यह व्यक्तिगत तरीका हमारी सच्चाई की गवाही, हमारे ज्ञान और स्नेही स्वर्गीय पिता से हमारे व्यक्तिगत मार्गदर्शन को जरिया है। यह उसके अद्भुत समाचार योजना के एक आवश्यक लक्षण है जो उसके प्रत्येक बच्चे की इसकी सच्चाई की एक व्यक्तिगत गवाही प्राप्त करने की अनुमति देता है। पवित्र आत्मा के द्वारा अपने स्वर्गीय पिता से बातचीत का सीधा व्यक्तिगत माध्यम योग्यता पर आधारित होता है और इतना जरूरी है कि हम हर सब्बात के दिन पर प्रभु भोज की ग्रहण करने के द्वारा अपने अनुबंधों को नवीनीकरण करने की आज्ञा दी गई है। इस प्रकार से हम उस प्रतिज्ञा के योग्य ठहरते हैं जिससे हमारे मार्गदर्शन के लिए हमारे पास पवित्र आत्मा सदा रह सके। प्रभु के साथ बातचीत के इस व्यक्तिगत तरीके से संबंधित हमारी धारणा और प्रथा उन ईसाइयों के समान है जो इस बात पर बल देते हैं कि परमेश्वर और मनुष्य के बीच मानवीय मध्यस्थता एक अनावश्यक है, क्योंकि मार्टिन लूथर के द्वारा संदर्भ किए गए सिद्धांत सभी विश्वासियों के पौरोहित्य के तहत कर कोई सीधे तौर पर परमेश्वर से बातचीत कर सकता है। बाद में इसके विषय में और बोलूंगा। व्यक्तिगत निर्णय और पारिवारिक संचालन में व्यक्तिगत तरीका बहुत ही महत्वपूर्ण है। दुर्भाग्यपूर्ण गिरजाघर के कुछ सदस्य इस सीधे व्यक्तिगत तरीके की आवश्यकता को कम आंकते हैं, क्योंकि भविष्य सूचक नेतृत्व निश्चय रूप से महत्वपूर्ण है। पौरोहित्य का तरीका जिसका उपयोग मुख्य रूप से गिरजाघर के मामलों में स्वर्गीय वार्तालाप के संचालन के लिए किया जाता है। कुछ लोग अपने व्यक्तिगत निर्णय को करने के में पौरोहित्य को मार्गदर्शक की सहायता लेते हैं। वो निर्णय जिसे अपने व्यक्तिगत तरीका की प्रेरणा द्वारा उन्हें स्वयं लेना चाहिए। व्यक्तिगत निर्णय और परिवार पर संचालन विशेष रूप से व्यक्तिगत तरीका के विषय है। मैं तो चेतावनी का जोड़ना चाहता हूँ जिस हमें अपने स्वर्गीय पिता के साथ वार्तालाप के इस मूल्यवान सीधे व्यक्तिगत तरीके के संबंध में याद रखना चाहिए। पहली, इसकी परिपूर्णता में व्यक्तिगत तरीका पौरोहित्य के तरीका के से समान स्वतंत्र होकर काम नहीं करता है। पवित्र आत्मा का उपहार, परमेश्वर द्वारा मनुष्य से बातचीत करने का तरीका उन पौरोहित्य अधिकारियों द्वारा प्रदान किया जाता है जो पौरोहित्य कुंजिया के धारक होते हैं। इस केवल इच्छा या विश्वास से प्राप्त नहीं किया जा सकता है और निरंतर रूप से इस आत्मा के साथ के अधिकार को हर सब बात पर पुष्टि करने की आवश्यकता होती है जब हम योग्यता से प्रभु भोज को ग्रहण करते हैं और आज्ञाकारिता और सेवा के अपने बपतिस्मा के अनुबंधों का नवीनीकरण करते हैं। इसके समान हम सीधे व्यक्तिगत तरीके पर निर्भर होते हुए वार्तालाप नहीं कर सकते हैं। यदि हम पौरोहित्य के तरीके के प्रति अवज्ञाकारी हैं या उसके सामंजस्य में नहीं है, प्रभु ने घोषित किया है कि स्वर्ग की शक्तियों के केवल धार्मिकता के सिद्धांत का उपयोग करने के द्वारा ही नियंत्रित किया जा सकता है या उन्हें संभाल जा सकता है। दुर्भाग्यपूर्ण यह उन व्यक्तियों के लिए सामान्य है जो कि परमेश्वर की आज्ञाओं के उल्लंघन करते हैं या अपने पौरोहित्य के मार्गदर्शकों की सलाह को नहीं मानते हैं। यह घोषित करने के लिए कि परमेश्वर ने उन पर प्रकट किया है कि वो कुछ आज्ञाओं के पालन से कुछ सलाह के अनुसरण से बच सकते हैं। इस प्रकार के व्यक्ति प्रकटीकरण या प्रेरणा प्राप्त कर सकते हैं, परंतु यह उस माध्यम से नहीं है जिसे उन्हें प्राप्त करना चाहिए। शैतान झूठ और गलतियों का पिता है और अपने धूर्त अनुकरण से वह सदा ही परमेश्वर के कार्य की व्यर्थ करने की इच्छा रखता है। व्यक्तिगत तरीका के विपरीत, जिसमें हमारा स्वर्गीय पिता पवित्र आत्मा के द्वारा हमसे सीधे तौर पर बातचीत करते हैं, वार्तालाप की पौरोहित्यों के तरीके में अतिरिक्त और आवश्यक मध्यस्थता है जिसके कि हमारा उद्धारकर्ता यीशु मसीह, उसका गिरजाघर और उसके नियुक्त मार्गदर्शक आपने प्रायश्चित भरे बलिदान के द्वारा उसने जो प्राप्त किया है उसके कारण यीशु मसीह के पास उनके परिस्थितियों के दिशा निर्देशक की शक्ति है जिससे उसके प्रायश्चित की आशीषों के पाने के योग्य होने के लिए हमें पूरा करना होगा। इसीलिए हमारे पास आज्ञाएं और धर्म विधियां हैं, इसीलिए हम अनुबंध बनाते हैं। इसी प्रकार हम प्रतिज्ञा की गई आशीषों के योग्य होते हैं। जो कुछ हम कर सकते हैं उससे कर लेने के पश्चात ये सभी आशीष इसराइल के पवित्र द्वारा की गई दिया और अनुग्रह से आती है। अपनी पार्थिव सेवा काल के दौरान यीशु मसीह ने पौरोहित्य के अधिकार को प्रदान किया था जिसमें उसका नाम है और उसका गिरजाघर स्थापित किया जिसमें भी उसका नाम है। इस अंतिम युग में उसके पौरोहित्य अधिकार स्थापित हुआ था और उसका गिरजाघर स्वर्ग के समय संदेश वाहक की सेवा काल को भविष्यवक्ता जोसेफ स्मिथ द्वारा पुनर्स्थापित किया गया था। यह स्थापित पौरोहित्य और पुनर्स्थापित गिरजाघर पौरोहित्य की तरीका के कारण के निर्णायक भाग है। पौरोहित्य की तरीका वह माध्यम है जिससे प्राचीन समय में परमेश्वर ने अपने बच्चों से धर्मशास्त्र द्वारा बात की है और यह वो तरीका है जिससे वह वर्तमान में जीवित भविष्य वक्ताओं के और प्रेरित और अन्य प्रेरित मार्गदर्शकों के शिक्षाओं और सलाहों के द्वारा बात करता है। वो तरीका है जिससे हम आवश्यक धर्म विधियों को प्राप्त करते हैं। यही वो तरीका है जिससे उसके गिरजाघर में सेवा की प्रति भाग लेने के सु अवसर का प्राप्त करते हैं, जो को भी प्रभु को कार्य को पूरा करने के लिए आवश्यक है। इन गतिविधि में शामिल है सुसमाचार का प्रचार करना, मंदिरों और प्रार्थनालय को निर्माण करना और गरीबी को मदद करना। इस पौरोहित्य के तरीके के संबंध में हमारी धारणा और प्रथा कुछ उन ईसाइयों के आग्रह के समान है कि आधिकारिक धर्म विधियों आवश्यक है और उन्हें किसी एक प्राधिकृत व्यक्ति द्वारा ही किया जाना चाहिए और ऐसे मसीहों द्वारा ठहराया जाना चाहिए। हम भी उसी में विश्वास करते हैं, परंतु हम जिस प्रकार से उस अधिकार को प्राप्त करने का दावा करते हैं उस प्रकार ईसाइयों से हमारी धारणा निश्चय रूप से भिन्न है। गिरजाघर के कुछ सदस्य या पूर्व सदस्य पौरोहित्य के तरीके को महत्व को पहचान में असफल हो जाते हैं। वो गिरजाघर और उसके मार्गदर्शकों और उसके कार्यक्रम को महत्व को कम मांगते हैं। पूरी तरह से व्यक्तिगत तरीके पर आधारित भविष्यवक्ता मार्गदर्शकों को शिक्षाओं को विपरीत जाकर सिद्धांत की परिभाषा के तात्पर्य को समझता हुए और मुकाबला कर रहे गिरजाघर को नेतृत्व करते हैं। वो अपने स्वर्ग के मार्ग पर चलते हैं। जब ये ऐसा करते हैं वो प्रतिकूल आचरण का प्रदर्शन करते हैं कि जो कि आधुनिक संसार में बहुत ही सामान्य है। उस चीज के लिए जिस कुछ लोग असमानता में संगठित धर्म कहते हैं वो जो संगठित धर्म के प्रति आवश्यकता को अस्वीकार करते हैं, स्वामी को कार्य को अस्वीकार करते हैं जिसने प्राचीन समय के अपने गिरजाघर को और उसके अधिकारों को स्थापित किया और जिन्होंने आधुनिक समय में उस पुनर्स्थापित किया जाता है। जैसा कि प्रेरित पौलुस ने सिखाया, ईश्वरीय अधिकार द्वारा स्थापित संगठित धर्म आवश्यक है जिससे पवित्र लोग सिद्ध हो जाए और सेवा के काम किया जाए। जी, आधुनिक प्रकृति में प्रभु की वस्ता की हम याद रखना चाहिए कि प्रभु के सेवकों को आज प्रभु की आवाज है। मैं दो चेतावनी को जोड़ना चाहता हूँ जिसे हमें अत्यावश्यक प्रवृत्ति के तरीका पर विश्वास संबंध में याद रखना चाहिए। पहली प्रवृत्ति के तरीका का व्यक्तिगत तरीका के आवश्यकता को अलग नहीं करता है। हम और सभी की सच्चाई को व्यक्तिगत गवाही की आवश्यकता है। जैसे जैसे हमारा विश्वास बढ़ता है हम अनिवार्य रूप से शब्दों को और दूसरों को विश्वास पर निर्भर होते हैं जिसके हमारे माता पिता शिक्षक और मार्गदर्शक का विश्वास कर। परंतु व्यक्तिगत तरीके से गवाही के को प्राप्त करने के स्थान पर यदि हम पूरी तरह से सच्चाई की अपने व्यक्तिगत गवाही के लिए किसी विशिष्ट पुरोहित मार्गदर्शक या शिक्षक पर निर्भर होते हैं तब हम उस व्यक्ति को क्रिया को द्वारा सदा के लिए गलत धारणा को लेकर असुरक्षित रहते हैं। एक परिपक्व ज्ञान और सच्चाई की गवाही को प्राप्त करने में हमें अपने और स्वर्गीय पिता के बीच नश्वर मध्यस्थता पर आधारित नहीं होना चाहिए। दूसरी व्यक्तिगत तरीके के समान पौरोहित्य का तरीका तब तक हमारे लाभ के लिए पूरी तरह से और उचित तरीके से काम नहीं कर सकता है जब तक हम योग्य और आज्ञाकारी न हो। कई धर्मशास्त्र सिखाते हैं कि यदि हम परमेश्वर की आज्ञाओं का गंभीरता से उल्लंघन करने में डट रहते हो तब हमें उसकी उपस्थिति से अलग कर दिया जाता है। जब ऐसा होता है प्रभु उसके सेवक हमें आत्मिक मदद देने में बहुत ही सीमित हो जाते हैं और हम उससे अपने स्वयं के लिए प्राप्त नहीं कर सकते हैं। इतिहास हमें प्रभु के सेवकों को आत्मा को सामंजस्य में होने के महत्व का जीवंत उदाहरण प्रदान करता है। युवा भविष्यवक्ता जो जोसेफ स्मिथ अनुवाद नहीं कर सकते थे जब वो क्रोधित और निराश होते हैं। डेविड व्हिटमर याद करते हैं एक सुबह जब वो अनुवाद के कार्य को जारी रखने की तैयारी कर रहे थे घर में कोई समस्या उत्पन्न हो गई और वो उसके कारण निराश हो गए। समस्या कुछ ऐसा था कि उनकी पत्नी एमा ने कुछ किया था। ओलिवर और मैं ऊपर गए और शीघ्र ही उसके पश्चात जोसेफ अनुवाद का कार्य जारी रखने आए परंतु वे कुछ भी नहीं कर सके। वो एक अक्षर का भी अनुवाद कर न सके। वो नीच गए फलों के बाग में और प्रभु ने इस प्रार्थना की। लगभग एक घंटा की बीत चुका था। घर में वापस आए एमा से क्षमा मांगी और फिर ऊपर आए जहां हम थे और अनुवाद सही तरीका से जारी रहे। वो तब कुछ नहीं कर सके तब तक वो की विनम्र और बिना विश्वासी नहीं हुए। मैं उन दोनों को तरीका को आवश्यकता को उदाहरण के साथ समाप्त करूंगा जिसे स्वर्गीय पिता ने अपने बच्चों के साथ वार्तालाप के लिए स्थापित किया है। दोनों उसको बच्चों के प्रति उसके उद्देश्य अमरत तो और अनंत जीवन का प्राप्त करना के लिए आवश्यक है। प्राचीन धर्मशास्त्र के विवरण में यह आवश्यकता मूसा के ससुर इत्री के सलाह में है कि मूसा के अत्याधिक काम करने के प्रयास नहीं करना चाहिए। परमेश्वर से पूछने के लिए और उनके बीच न्याय करने के लिए लोग सुबह से रात तक अपनी पौरोहित्य मार्गदर्शक पर निर्भर रहते हैं। गिरजाघर में हम अक्सर ध्यान देते हैं कि किस प्रकार इत्रो मूसा की व्यक्तिगत विवादों को निपटाने के प्रति न्यायाधीशों की नियुक्त करने की सलाह देते हैं। परंतु इत्रो ने मूसा की वह सलाह भी दिया था जो व्यक्तिगत तरीके के महत्व को दर्शाते हैं। इन्हों विधि और व्यवस्था प्रकट करके जिस मार्ग पर इन्हें चलना और जो काम इन्हें करना है वो इनका जता दिया कर। दूसरे शब्द में इसराइल के बच्चों को सिखाया गया कि हर प्रश्न के उत्तर के लिए उन्हें उनके पौरोहित्य मार्गदर्शक के पास नहीं जाना चाहिए। उन्हें गांव के समझाना चाहिए और स्वयं ही अधिकतर समस्या को समाधान प्रेरणा द्वारा करना चाहिए। चिली की राष्ट्र की हाल ही की घटना दोनों तरीका की आवश्यकता को दर्शाती है। चिली में एक विनाशी भूकंप आया था। हमारे कई सदस्य बेघर हो गए। कुछ ने एक परिवार के सदस्य को खो दिया। कोई लोगों ने आत्मविश्वास खो दिया शीघ्रता से क्योंकि हमारा गिरजाघर इस प्रकार की विपत्तियों के लिए तैयार था। खाद्य पदार्थ आश्रय और अन्य सहायक सामग्री को उपलब्ध कराया था। चिली के संतों ने प्रभु की आवाज को उसके गिरजाघर के द्वारा सुना और मार्गदर्शक ने उनकी भौतिक जरूरत को पूरा किया। परंतु पौरोहित्य की तरीका चाहे कितना भी कारगर क्यों न हो पर्याप्त नहीं था। हर सदस्य का प्रार्थना में प्रभु से बात करने और सांत्वना और मार्गदर्शन आवश्यकता थी जो उन लोगों के पास पवित्र आत्मा द्वारा आती है। हमारा प्रचार कार्य दोनों तरीका की आवश्यकता का वन्य उदाहरण है। पुरुष और स्त्री जिन्हें प्रचार कार्य के लिए बुलाया जाता है वो पौरोहित्य के तरीका द्वारा प्राप्त शिक्षाओं के और व्यक्तिगत तरीके द्वारा प्राप्त गवाही के कारण योग्य और इच्छुक होते हैं। उन्हें पौरोहित्य के तरीके द्वारा नियुक्त किया जाता है। इसके पश्चात प्रभु के प्रतिनिधि के रूप में और उसके पौरोहित्य के तरीका के निर्देशन अनुसार वो खोजकर्ता को सिखाता है। आखिरी उदाहरण परिवार और गिरजाघर में पौरोहित्य अधिकार के विषय को दर्शाता है कि कैसे लागू करना है। गिरजाघर के भी सभी पौरोहित्य के अधिकार का उपयोग उस व्यक्ति के निर्देशानुसार होता है जो उपयुक्त पौरोहित्य के कुंजियों का धारक होता है। ये पौरोहित्य का तरीका है, परंतु अधिकारी जो परिवार पर अध्यक्षता करता है, चाहे वो पिता हो अकेले रही माँ, किसी पौरोहित्य कुंजिया के धारक से बिना अनुमोदन की आवश्यकता के पारिवारिक मामले में कार्य कर सकती है। वो व्यक्तिगत तरीके के सामने है। दोनों तरीका से हमारे पारिवारिक और व्यक्तिगत जीवन में कार्य होना चाहिए। यदि हमें आगे बढ़ना हो और अपने स्वर्गीय पिता की योजना के तहत उसके बच्चे के अनंत जीवन प्राप्त करना है, नश्वर जीवन के उद्देश्य विकास को उचित संतुलन में प्राप्त करने के लिए हमें दोनों व्यक्तिगत तरीके और पौरोहित्य तरीका को तरीके उपयोग करना है। यदि व्यक्तिगत धार्मिक अभ्यास पूरी तरह से व्यक्तिगत तरीके पर आधारित हो, विशिष्ट व्यक्ति पर ध्यान ईश्वरीय अधिकार के महत्व मिटा देता है। यदि व्यक्तिगत धार्मिक अभ्यास ज्यादातर पौरोहित्य तरीके पर आधारित हो, व्यक्तिगत विकास रुक जाता है। परमेश्वर के बच्चों के उनकी अनंत नियति को प्राप्त करने के लिए दोनों तरीका की आवश्यकता है। पुनर्स्थापित संसार दोनों तरीका की सिखाता है और पुनर्स्थापित गिरजाघर दोनों तरीका को उपलब्ध है। मैं बयान देता हूँ, प्रभु को भविष्य वक्ता अध्यक्ष थॉमस एस मॉन्सन के पास पौरोहित्य का सभी कुंजियां है। मैं यीशु ख्रिस्त को बयान देता हूँ जिसका गिरजाघर ये है। मैं गवाही देते हूँ कि बहाल सुसमाचार की सत्यता को जिसके कारण हमारे पास व्यक्तिगत तरीके से परमेश्वर से बात करने का माध्यम उपलब्ध है। ईसा मसीह के नाम में आमेन।
beautiful.
कितना सुंदर था ये गाना. हम अपने गहरे आभार को टेबल क्राउन क्वायर के लिए देते हैं जिन्होंने इस संगीत को हमें प्रदान किया है सुबह इस कॉन्फ्रेंस का. अब हम प्रिविलेज से सुनेंगे थॉमस मॉन्सन.
Conclude with a choir singing, Now let us rejoice. The benediction.
उसके बाद में let us rejoice का हम सुनेंगे.
Concluding session of this conference will begin at 2:00.
इस कॉन्फ्रेंस का आखिरी सेशन 2:00 चालू होगा.
This has been a marvelous session.
ये बहुत ही बेहतरीन सेशन रहा है. जब मुझे गिरजे का प्रेसिडेंट बनाया गया मैंने कहा मैं एक अपने ऊपर काम लूंगा. मैं टैबरनेकल कार का एडवाइजर बनूंगा. मैं अपने क्वायर का बहुत से बहुत खुश हूँ. मेरी माँ ने मुझसे एक बार कहा कि टॉमी मैं तुमसे इतनी ज़्यादा खुश हूँ पर मुझे तुम्हें एक बात कहना ज़रूरी है. तुम्हें पियानो
बजाते थे
तो मैं पियानो पे गया और
Here we go. Here we go.
गया और वहां पे मैंने बजाया here we go to a birthday party. और फिर उसने सुनने के बाद उन्होंने मुझे गले लगाया.
I think of her.
मैं उनके बारे में सोचता हूँ. मैं उनके अपने पिता के बारे में सोचता हूँ. मैं उन सब जनरल अथॉरिटीज के बारे में सोचता हूँ और जो विधवाओं जिनके मैं देखने गया.
For the chicken, for the oven. Sometimes a little money for their pocket. I visited one late one night.
Midnight.
And I went to the nursing home. The keeper said, "Oh, I'm sure she's asleep."
In the nursing home, gal. गया और वो सो रही थी. मैं नर्सिंग होम गया.
Called by name. जब
मैंने उनका नाम बुलाया तो वो उठ गईं.
I knew you'd come.
और उन्होंने मुझसे कहा कि मैं जानती हूँ तुम जरूर आओगे थॉमस. मैं कैसे नहीं जा सकता था. सुंदर संगीत मुझे उस तरह प्रभावित करता है. मेरे प्यारे भाई और बहनों हमने आज सच में आशा प्रेम की प्रेरकदायक संदेशों को सुना है. हमारे विचार उसकी ओर मुड़ गए हैं जिसने हमने हमारे पापों के लिए प्रायश्चित किया था. जिसने हमें जीने का मार्ग दिखाया था और कैसे प्रार्थना करनी है सिखाया था. जिसे अपने कामों की सेवा के आशीष को दिखाया था यानी हमारे प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह.
In the book of Luke, chapter 17.
लूक की पुस्तक की 17वें अध्याय में हम उस विषय में पढ़ते हैं. और ऐसा हुआ कि ये यरूशलेम जाते समय सामरिया और गलील के बीच में जा रहा था और किसी ज्ञान प्रकट करते हुए उसे 10 कोड़े मिले और उन्होंने दूर खड़े होकर ऊंचे सबसे कहा ये यीशु हम पर दया कर. और जब उन्होंने देख कर कहा जाओ और उन तई याजकों को दिखाओ और जाते जाते वे शुद्ध हो गए. तब उनमें से एक देख कर मैं चंगा हो गया. ऊंचे सबसे परमेश्वर की बड़ाई करता हुआ लौटा.
glorified God. I fell down on his face at his feet.
और यीशु के पांव के मुंह पर बल गिर गया, उनको धन्यवाद करने लगा, और वो समरेटन था. इस पर यीशु ने कहा, क्या दसों शुद्ध नहीं हुए? तो फिर वो यहाँ क्यों नहीं है? क्या इस परदेशी को छोड़कर कोई नहीं निकला जो परमेश्वर की बड़ाई करता है? तब उसने उसे कहा, उठकर चला जा, तेरे विश्वास से तुझे चंगा किया गया है. देवी मध्यस्थता के द्वारा उन कोड़ियों को क्रूर धीमी मृत्यु से बचा लिया गया. उन्हें जीवन जीने का नया मौका मिला था. एक को कोड़ी द्वारा व्यक्त की गई कृतज्ञता ने स्वामी की आशीष को बढ़ाया, नौ कौड़ियों द्वारा व्यक्त की गई कृतज्ञता ने उसकी निराशा को. मेरे भाई बहन, क्या हम अपनी मिले आशीर्वाद को धन्यवाद देना याद रख सकते हैं? दिल से धन्यवाद देने में हमें न केवल अपनी आशीषों को पहचानने में मदद मिलती है, बल्कि ये स्वर्ग के दरवाजे भी खोल देता है और हमें परमेश्वर के प्यार को महसूस करने में मदद करता है. मेरे प्यारे दोस्त प्रेसिडेंट गॉर्डन बी हिंकले ने एक बार कहा था, जब आप कृतज्ञ होकर जीवन जीते हैं, आप घमंड, चिंता और स्वार्थ पूरे जीवन पूर्ण जीवन नहीं जीते हैं. आप धन्यवाद की आत्मा के साथ जीवन जीते हैं और यही आपके लिए उचित है और आपका जीवन आशीषित करेगा. धन्यवाद गॉर्डन.
In the book of Matthew, in the Bible,
बाइबल की मैथ्यू की पुस्तक में कृतज्ञ की एक अन्य घटना है. उसे उद्धारकर्ता ने प्रकट किया था जब यह 3 दिनों के वीरान यात्रा में कर रहा था. 4,000 से ज्यादा लोग उसके पीछे चल और यात्रा कर रहे थे. उसे उन पर दया आई क्योंकि उन्हें 3 दिनों से कुछ नहीं खाया था. हालांकि उसके चरणों ने पूछा, हमें जंगल में कहाँ से इतनी रोटी मिलेगी कि हम इतनी बड़ी भीड़ को तृप्त करें? हमें से बहुत बहुत ही कितने चेलों की उस वस्तु की कमी कर रही वही नजर आ रही थी. और यीशु ने उनसे पूछा, तुम्हारे पास कितनी रोटियां हैं? और उन्होंने चेलों से कहा, 7 और थोड़ी सी छोटी मछलियां. यीशु ने उन लोगों से भूमि बैठने की आज्ञा दी और उन 7 रोटी और मछली को ले धन्यवाद करके तोड़ा और अपने चेले को देता गया और चेले लोगों को
and gave to his disciples, and the disciples to the multitude. Notice that the Savior gave thanks for what they had, and a miracle followed.
धान दे कि दारकर्ता ने जास उनके पास जो था उन्होंने धन्यवाद दिया था और उसके बाद चमत्कार हुआ. मैं उदाहरण देता हूँ. 100 सब खाकर तृप्त हो गए और बचे टुकड़े से भरते हुए 7 टोकरे उठाए. हम सबों से ये ऐसे समय का अनुभव किया है कि हमारा सारा ध्यान हमारे आशीषों पर केंद्रित होने के बजाय जो हमारे पास नहीं है उस पर केंद्रित होता है. यूनानिक दार्शनिक एपिक्टेटस ने कहा था, बुद्धिमान वह है जिसके पास नहीं है उसके लिए दुखी नहीं होता, बल्कि जो उसके पास नहीं है उससे वो खुश होता है. कृतज्ञता का दिव्य सिद्धांत है. भविष्य को दिए एक प्रकटीकरण में प्रभु ने घोषणा की थी कि हमें सब बातों के लिए अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद करना चाहिए.
Or against none is his wrath kindled, save those who confess not.
किसी भी अन्य कार्य से मनुष्य परमेश्वर के प्रति अपराध नहीं करता है या किसी भी अन्य के विरुद्ध उसका क्रोध नहीं भड़कता है सिवा या उसके हर काम के लिए धन्यवाद नहीं करता है. मॉर्मन की पुस्तक में हमें कहा गया है, जो दया और ऐश्वर्य उनके परमेश्वर ने तुम्हें दिया है उसके लिए कृतज्ञ प्रकट करते रहो. हमारी परिस्थितियाँ कैसे भी हों, हम में से हर एक के जीवन में अपराध पकड़ने के लिए बहुत कुछ है. केवल हमें शांति में अपनी आशीष पर विश्वास करना होगा. पृथ्वी पर होने का ये बढ़िया समय है. आज इस समय में सबके साथ बहुत कुछ हो जाते हैं, बहुत सी बातें हैं और असही और अच्छी हैं. ऐसे विवाह हैं जो सफल रहते हैं, माता पिता जो अपने बच्चों से प्रेम करते हैं और उनके लिए त्याग करते हैं, मित्र जो अपने एक दूसरे का ध्यान रखते हैं, मदद करते हैं, अध्यापक जो शिक्षा देते हैं. हमारे जीवन कई प्रकार से आशीषित हुए हैं.
हम अपने आप को ऊपर उठा सकते हैं और दूसरों को भी, जब हम नकारात्मक विचारों को त्याग कर देते हैं और अपने हृदयों के भीतर कृतज्ञता को उत्पन्न करते हैं। यदि अकृतज्ञता गंभीर अपराधों से एक को हो सकता है, फिर कृतज्ञता कुलीनता गुणी से में से एक है। किसी ने कहा है कि कृतज्ञता से न केवल महानतम गुण है बल्कि सभी गुणों का जन्मदाता है।
How can we cultivate within our hearts an attitude of gratitude?
हमने हृदय के भीतर कृतज्ञता के भाव कैसे पैदा कर सकते हैं? अध्यक्ष जोसेफ स्मिथ गिरजाघर के छठवें अध्यक्ष ने जवाब दिया था। उन्होंने कहा था, कृतज्ञ व्यक्ति संसार में बहुत सी बातें धन्यवाद प्रकट करने के लिए देखता है और बुराई के लिए अपेक्षा अच्छाई अधिक नजर आती है। प्रेम ईर्ष्या को हरा देता है और प्रकाश उसके जीवन के अंधकार को दूर कर देता है। उन्होंने आगे कहा, घमंड हमारे कृतज्ञता का नाश करता है और उसके स्थान पर स्वार्थीपन उत्पन्न करता है। आभारी और प्यार करने वाली आत्मा की उपस्थिति में हम कितने खुश रहते हैं और प्रार्थना पूर्वक जीवन के माध्यम द्वारा परमेश्वर और मनुष्य के प्रति धन्यवाद का व्यवहार बढ़ाने के लिए हमें कितना सावधान रहना चाहिए। अध्यक्ष स्मिथ हमसे कह रहे हैं कि प्रार्थना पूर्वक जीवन कृतज्ञता पाने की कुंजी है। भौतिक वस्तुओं को प्राप्त करने से हम खुश और भारी होते हैं, शायद कुछ देर के लिए। हालांकि जो बातें गहन और स्थायी खुशी और कृतज्ञता देती हैं, उसे पैसे से नहीं खरीदा जा सकता है। परिवार, सुसमाचार, अच्छे मित्र, हमारे स्वास्थ्य, हमारी योग्यताएं, प्रेम और जो हमारे आसपास लोगों से मिलता है, दुर्भाग्य से ये उनमें से कुछ बातें हैं जिसके लिए हमारे लिए आभार हम प्रकट नहीं करते।
Unfortunately, these are some of the things we allow ourselves to take for granted. The English author
Aldous Huxley ने लिखा था, अधिकतर मनुष्य के बिना आभार प्रकट किए वस्तु लेने की असीम शर्मता होती है। हम अक्सर उन्हीं लोगों का धन्यवाद प्रकट नहीं करते हैं जिन्होंने हमारी कृतज्ञता की अधिकतम जरूरत होती है। हम इसके लिए इतना इंतजार न करें कि ऐसा नहीं हो कि हमें कृतज्ञता प्रकट करने में बहुत देर हो जाए। अपने खोए प्रियजनों के विषय में बात करते समय एक स्त्री ने दुखी होकर बताया था, मुझे आनंद के उन दिनों की याद है और अक्सर मेरी इच्छा होती है कि काश मैं उन मृतक खानों में कृतज्ञता के शब्द बोल सकती जिसे उन्होंने अपने जीवन में कभी नहीं सुना था और जिसके वह हकदार थे। प्रियजनों का खोना निश्चित रूप से हमारे दिलों में दुख लाता है। आओ हम उनके प्रति प्रेम और कृतज्ञता प्रकट करें। इस तरह की अनुभूतियों को मानव रूप से जितना संभव उतना कम करें। हम कभी नहीं जान सकते कि कब बहुत देरी हो जाएगी।
A grateful heart.
स्वर्गीय पिता के आशीषों के लिए हमारे आसपास के लोगों को कुछ वो हमारे जीवन देते हैं। दयामार पकड़ने से हमें एक कृतज्ञ हृदय मिलता है। इसके लिए विचारशील प्रयास की जरूरत होती है, कम से कम उस समय में जब हम सचमुच में कृतज्ञता प्रकट करने का व्यवहार नहीं सीखते हैं और उत्पन्न करते हैं। अक्सर हम व्यवहार महसूस करते हैं और धनभार पकड़ने के लिए इच्छा करते हैं, लेकिन ऐसा करना भूल जाते हैं या पैसा करने के लिए समय नहीं निकाल पाते हैं। किसी ने कहा, कृतज्ञता महसूस करना और ऐसे नहीं प्रकट करना वैसे उपहार को सुंदर से लपेटना और किसी को न देना। जब अपने जीवनों में चुनौतियों परेशानियों का सामना करते हैं तो हमारे लिए आशीषों का ध्यान देना अक्सर कठिन हो जाता है। फिर भी हमें गहनता और ध्यान से दृष्टि दौड़ाएं तो हम महसूस करेंगे जानेंगे कि हमें बहुत कुछ दिया गया है।
I share with you,
मैं आपके साथ एक ऐसे परिवार के विवरण को बांटता हूं जो गंभीर चुनौतियों के बीच आशीषों को खोज सकता था। ये विवरण मैंने कई वर्ष पहले पढ़ा था और जो संदेश देता है उसके कारण अपने पास रखा है। इसे गोर्डन ग्रीन ने लिखा था और 50 साल पहले ये एक अमेरिकन पत्रिका में छपा था। गोर्डन टेल्स अस गोड बताता है कि ये कैसे कनाडा के कल्याण में बड़ा हुआ था, जहाँ उसे और उसके भाई बहनों को विद्यालय जाना पड़ता था, जबकि दूसरे बच्चे गेंद से खेलते थे और तैरने जाते थे। उनके पिता के पास इतनी योग्यता थी कि वह उन्हें समझने में मदद कर सके कि उनके पास कुछ करने की कीमत है। ये फसल काटने के विशेष रूप से सच था जब परिवार धन्यवाद समारोह मनाता था, क्योंकि उस समय उनके पिता हर एक वस्तु की सूची बनाने के लिए कहते थे जो उनके पास थे। धन्यवाद समारोह के सुबह वो उन्हें नीचे गोदाम ले जाते जहाँ सेबों के पीपे, चुकंदर की टोकरियाँ, रेत में रखी गाजरें, बोरियों में भरे आलूओं के पहाड़ के साथ मटर, मक्का, सेम की फलियाँ, जेली, स्ट्रॉबेरी, अन्य मुरब्बे रखते रखे जाते थे। वो बच्चों के हर एक वस्तु को ध्यान की गिनती करने के लिए कहते थे। फिर वे खलिहान में जाते थे, अनुमान लगाते थे कि कितना टन भूसा वहाँ था और अनाज के गोदाम में कितना अनाज पड़ा हुआ था। वे गायें, सुअर, मुर्गियों, टर्की और बतख को भी गिनते थे। उनके पिता कहते थे कि वे जानते थे कि परिवार की जरूरत के हिसाब से कितनी वस्तुएं थी, लेकिन वे जानते थे कि उन्हें उस त्यौहार के दिन महसूस करवाना चाहते थे कि परमेश्वर ने किस बहुतायत से इन्हें आशीष और कड़ी मेहनत का फल दिया था। अंततः जब वो विशेष भोजन को खाने के लिए बैठते थे जिनके उनकी माँ पकाती थी, वो उन आशीषों को महसूस करते थे। गोर्डन ने बताया कि हालांकि जिस धन्यवाद समारोह को अधिक धन्यवाद देकर याद करते थे, वो उस साल था जब उनके पास धन्यवाद देने के लगभग कुछ नहीं था। साल की शुरुआत ठीक हुई थी, उनके पास काफ़ी भूसा था, बहुत बीज थे, सुअर चार बच्चे थे, उनके पिता के पास थोड़ा सा धन भी था जिन्होंने हे लोडर भूसा काटने उठाने वाली मशीन खरीदने के लिए अलग रखा हुआ था। अधिकतर किसान उस मशीन को पाने को सपना देखते थे। इसी साल हमारे शहर में बिजली आई थी, हालांकि उनकी बिजली नहीं मिली थी क्योंकि वो उसे खर्चा नहीं उठा सकते थे। एक रात जब गोल्डन की माँ बहुत सारे कपड़े धो रही थी, उनके पिता घर आए और उन्हें कपड़े धोने की अपनी बारी शुरू की। अपनी और पत्नी को आराम और बुनाई देने करने के लिए कहा। उन्होंने कहा, तुमने सोने से अधिक सपने कपड़े धोने में समय बिताती हो, तुम क्या सोचते हो कि हम क्या संकल्प तोड़ दें और बिजली ले लें? यदि भी माँ ने प्रस्ताव से खुश हुए, लेकिन जब उन्होंने विचार किया कि भूसा काटने वाली उठाने मशीन नहीं खरीदा जा सकती थी, उनकी आँख में आंसू आए। उस 100 साल बिजली के तार उनकी गली तक पहुँच गए। यद्यपि वो ज़्यादा रुचिकर नहीं था, उन्होंने कपड़े धोने की मशीन ले ली थी, सारे दिन काम करती थी और हर दिन चमकदार बिजली बल्ब लग गए थे। लालटेन में तीन मोमबत्ती काटना, गंदी चमकना, कहाँ से काम खत्म हो गए थे। लालटेन को गोदाम में रख दिया गया था। जैसे उनकी खेत आ रहे थे, बारिश शुरू हो गई। अंततः जब पानी कम हुआ तो वो एक पौधा भी नजर आ रहा था कि कैसा था। उन्होंने फिर से पौधे लगाए, लेकिन अधिक बारिश उन्होंने पौधे को भी जमीन पर गिरा दिया। उनके आलू कीचड़ में सड़ गए। उन्होंने कुछ गायें और उनके सारे सूअर और आने जाने को बेच दिया जिन्होंने रखने का विचार बनाया था। उस साल उन्होंने कुछ कुल फसल पाई कि वो केवल एक श्वेत शलगम के उन्हें तूफानों को झेल पाई थी।
Then it was Thanksgiving again.
फिर धन्यवाद समारोह आया। उनकी माँ ने कहा, इस साल हमें इसे भूल जाना चाहिए, हमारे पास कोई बतख नहीं बची है। धन्यवाद समारोह की सुबह गोर्डन के पिता ने एक जंगली खरगोश को लेके आया और अपनी पत्नी को उसे पकाने के लिए कहा। माँ ने यह दिखाते हुए उन्होंने अनिच्छा से पकाना शुरू किया और खरगोश ने मोटे मीट को गलने में बहुत समय लगेगा। अंत में जब से उसकी बची हुई शलगम के पास मेज पर परोसा गया, बच्चों ने उसे खाने से मना कर दिया। गोर्डन की माँ चलाए और फिर उसके पिता छत के गोदाम में गए, लालटेन लाए, उसे मेज पर रखा और जलाया। उन्होंने बच्चों से कहा, बिजली की बंद कर दो। जब सिर्फ लालटेन जल रही थी, उन्हें विश्वास नहीं हुआ था कि वह अंधेरा था जो पहले हुआ करता था। उन्हें आश्चर्य हो रहा था कि बिना बिजली की रोशनी के सभी वस्तु को कैसे देख पा रहा था।
They could hardly believe that it had been that dark before. They wondered how they had ever seen anything without the bright lights made possible by electricity.
भोजन की प्रार्थना की गई और सबने खाया। जब भोजन समाप्त हो गया वो चुपचाप बैठे रहे। गॉर्डन लिखा था, पुरानी लैंटर्न की कम रोशनी से हम सब कुछ साफ देख पा रहे थे। वो एक शानदार भोजन था। जंगली खरगोश का स्वाद टर्की जैसा लगा। शलगम बहुत अच्छी लगी। हमारे घर में बहुत कुछ न होते हुए सब कुछ था।
Our home for all of its wants was so rich to us. Close quote. My brothers,
मेरे भाई और बहनों, कृतज्ञता प्रकट करना दयामय उदारणी है। कृतज्ञता को दर्शाना महानता और भव्य काम है। लेकिन हमारा हमेशा हमारे हृदय में कृतज्ञ पर रहा हो ये स्वर्ग छूने के समान है। अब मैं सुबह सभा को समाप्त करता हूँ। सब बातें जिनके लिए हम धन्यवाद देते हैं उनके अतिरिक्त मेरी यह प्रार्थना है कि हमेशा मैं प्रभु और उद्धारकर्ता यीशु मसीह के लिए अपने कृतज्ञ प्रकट करें। उनके यशस्वी सुसमार को ने अपने जीवन के महानतम प्रश्नों को उत्तर दिया है। हम कहाँ से आए थे, हम यहाँ क्यों हैं, मरने के बाद हमारी आत्मा कहाँ जाती है। ये सोच समाचार उनके जीवन में दिव्य सच्चाई का प्रकाश लाती है और अंधकार जो अंधकार में रह रहे हैं।
Where do we go, our spirits, when we die? That gospel brings to those who live in darkness the light of divine truth. He taught us how to pray.
उन्होंने हमें प्रार्थना करना सिखाया, उन्होंने हमें जीना सिखाया, उन्होंने मरना सिखाया। उसका प्रेम जीवन प्रेम की विरासत का है। बीमार का उसने चंगा किया, कुशलियों को उसने ऊपर उठाया।
Downtrodden he lifted. The sinner.
वो केवल अकेले खड़े थे। कुछ प्रेरित ने उन्हें संदेह किया, एक ने उन्होंने धोखा दिया। रोमी सैनिक ने छाती को भेदा, क्रूर भीड़ ने उनकी जान ली। फिर भी गोलगोता की पहाड़ी पर उनकी दया भर शब्द सुनाया दया है। उन्होंने कहा, हे पिता, इन्हें क्षमा करो क्योंकि जानते नहीं कि वो क्या कर रहे हैं।
Forgive them, for they know not what they do. Who was this man of sorrow?
वो दुखी पुरुष कौन था, जिसकी रोगों से जान पहचानती? वो प्रतापी राजा प्रभुओं का प्रभु कौन है? वो हमारा स्वामी है, वो हमारा उद्धारकर्ता है, वो परमेश्वर का पुत्र है, वो हमारे उद्धार का रचयिता है। ये इशारा करता बुलाता है, मेरे पीछे चले आओ। उसने निर्देश दिया, जा तू भी ऐसा ही कर, मेरी आज्ञा को मानो।
He pleads, keep my commandments. Let us follow.
हमें उनके पीछे चलना है, हमें उनके उदाहरण की नकल करनी है, उनके वचनों का पालन कर। ऐसा करने से हम उनकी कृतज्ञता का दिव्य उपहार देते हैं। मेरी सच्ची हृदय से प्रार्थना है कि हम अपने व्यक्तिगत जीवन में कृतज्ञता से उन आश्चर्यजनक गुणों को प्रदर्शित करें। काश कृतज्ञता हमारी आत्माओं को अब और हमेशा के लिए अधिकता से बढ़ते। यीशु मसीह के नाम में, के पवित्र नाम में, आमीन।
Our dear and kind Heavenly Father.
मेरे प्यारे हमारे प्यारे और दयालु स्वर्गीय पिता, हम इस सत्र को समाप्त करते हैं हमारे दिल में भार के साथ में उन आशीर्वादों के लिए जिसने आपके पुनर्स्थापित गॉस्पल के लिए हम आपके जीते हुए प्रॉफिटों के लिए भी धन्यवाद देते हैं और हम आपके आशीर्वादों को मांगते हैं आपकी आत्मा से हमें आशीर्वाद दें ताकि हम वो करें जो सही है हम इस कहते हैं यीशु मसीह के नाम में आमीन
This has been a broadcast of the
180th General Conference ka Church of Jesus Christ of Latter-day Saints General Conference ka prasaran hua iske liye vyakhyan ko general authority general authorities or officers mein chuna gaya aur sangeet ko Mormon Tabernacle ne prasarit kiya is prasaran ko Bonneville Distribution ne public seva ke hisab se diya hai और इसका प्रसारण करना बिना अनुमति के वर्जित है